ओम शांति। सभी बोलो जरा, ओम शांति का अर्थ है ओम माना मैं आत्मा और शांति माना शांति, अर्थात मैं आत्मा कौन हूं? शांत स्वरूप या क्रोध स्वरूप हूं। फिर ओम क्रोधी बोलना पड़ेगा ना। ओम शांति माना मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। तो अभी हम आपसे बात करेंगे एक कंसेप्ट ऑफ सोल माइंड बॉडी मेडिसिन, जो सुबह करना था फिर सुबह नहीं कर पाए, अभी हम डिस्कस करेंगे आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट ईयर। जैसे कि आप सबको पता है, जैसे कोई अगर सीरियस पेशेंट हॉस्पिटल में आए और जैसे कोई सीरियस पेशेंट हॉस्पिटल में आता है तो सभी ये कहते हैं सीरियस पेशेंट हॉस्पिटल में आया, राइट। और उसको हम बचाने की कोशिश करते हैं कि तू बचा नहीं पाते हैं, तो डॉक्टर्स क्या कहते हैं पेशेंट के रिलेटिव को, क्या कहते हैं? यस, क्या कहते हैं? आई एम सॉरी, ही हैज गॉन, प्लीज टेक दी बॉडी, ऐसे ही बोलते हैं ना। कभी ये नहीं कहते हैं कि प्लीज टेक योर पेशेंट बैक। आया पेशेंट था किंतु अभी क्या लेके जा रहे हैं, चाहे वो इंडिया में हो चाहे अमेरिका में हो कहीं भी हो, सब जगह यही टर्म यूज करनी पड़ती है ना। पेशेंट आया किंतु जा अभी क्या रही है, बॉडी। जबकि वो पेशेंट का फेस वही, सब कुछ वही है, ब्रेन भी उसके अंदर है, हार्ट भी उसके अंदर है, कोई भी ऑर्गन निकल नहीं गया, सब ऑर्गन अंदर ही है, तो भी वो क्या बन गया, बॉडी बन गया। इसका अर्थ क्या हुआ, और हम कहते हैं ही हैज गॉन और शी हैज गॉन, प्लीज टेक दी बॉडी। हु हैज गॉन, कौन चला गया, मतलब लाइफ फोर्स चली गई ना, लाइफ फोर्स माना आत्मा, आत्मा चली गई। ये तो इसी डेड बॉडी से अगर किसी भी उसी हॉस्पिटल में कोई सीरियस पेशेंट है जिसको किडनी की आवश्यकता है या हार्ट ट्रांसप्लांटेशन की आवश्यकता है, तो हम इसके टिश्यू से उसका टिश्यू मैच कर सकते हैं। इसको कहते हैं हिस्टो कंपेटेबिलिटी टेस्ट, है ना। वो अगर हम टेस्ट कर लें और इस पेशेंट की इच्छा थी कि भले मेरे ऑर्गन डोनेट कर दें मरने से पहले, या इसके पेरेंट्स कहते हैं कोई बात नहीं आप ऑर्गन डोनेट कर दीजिए, तो हम देखेंगे कि हम उसके ऑर्गन, जब वो ऑर्गन जो यहां काम नहीं कर रहा अगर हम किसी दूसरे एक लाइव पर्सन में लगा देते हैं तो वहां पर काम करना शुरू कर देते हैं। अर्थात उस इसमें आत्मा नहीं है, ड्राइवर नहीं है, इसलिए वो अंग काम नहीं करते, किंतु इसमें आत्मा है, ड्राइवर है, तो वो अंग काम करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अब आत्मा कहां, जैसे हमने शरीर के बारे में हम पढ़ते हैं ना, मेडिकल कॉलेज में हम पढ़ते हैं एनाटॉमी ऑफ फिजिकल बॉडी, फिजियोलॉजी ऑफ फिजिकल बॉडी, ऐसे पढ़ते हैं ना, पैथोलॉजी। ऐसे ही हमको, क्योंकि आत्मा एक इंपॉर्टेंट चीज है, तो आत्मा के बारे में भी हमको पढ़ना चाहिए, है ना। आत्मा के बारे में हमको पढ़ाना चाहिए रेगुलरली, जैसे एनाटॉमी ऑफ फिजिकल बॉडी पढ़ते हैं ऐसे एनाटॉमी ऑफ सोल हमको पढ़नी चाहिए। तो आत्मा जो है वो कहां पर है, ये ब्रेन है, है ना, ये ब्रेन है और ये हाइपोथैलेमस है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये हमारा लोअर, ये सेरिबेलम है, ये जो मैंने बताया ना डायग्राम बनाया अभी, यहां पर मिड ब्रेन, पॉन्स और मेड्यूला, है ना, यहां से नर्व्स निकलते हैं, इसको लोअर ब्रेन कहते हैं, ये डायग्राम में बताया गया, और यहां पर आत्मा का निवास स्थान है ना। सोल क्या है, बेसिकली सोल एक पॉइंट ऑफ एनर्जी है ना, एक बिंदु है, अति सूक्ष्म, इन आंखों से ना दिखाई देने वाला है ना। आत्मा को भी आंखों से दिखने की कोशिश नहीं करनी, ये चीज आंखों से दिखाई नहीं देगी आपको। अगर आप अपने आप को यहां ऐसे करके कोशिश कर देखने की, बहुत टाइट करें अंदर, तो दिखाई नहीं देगी, क्योंकि जो चीज आंख से दिखाई नहीं देती है, काफी चीजें दुनिया में आंख से दिखाई देती है क्या, बहुत सारी चीजें आंखों से, जैसे अल्ट्रासाउंड आंखों से नजर आती है क्या, तो भी वेव तो है ना, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। बिजली भी आंखों से दिखाई नहीं देती है, दिखाई देती है आंखों से बिजली, तार के अंदर बिजली जा रही है हम दिखाई नहीं देते ना, किंतु क्या एविडेंस है कि बिजली जा रही है तार में से, करंट जा रही, क्या एविडेंस होता है बताइए। अगर पंखा चल रहा है, बल्ब जल रहा है, इसका अर्थ क्या है, लाइट आ रही है, लाइट जा रही है बिजली के तार में से, तो यही इसका एविडेंस है ना। अगर एक इंसान बोल रहा है, चल रहा है, फिर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, आत्मा है। और आत्मा अगर शरीर से निकल गया आत्मा तो क्या होगा, ना बोल सकते हैं, ना चल सकते हैं, ना कुछ सुन सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते ना, कोई भी ऑर्गन फंक्शन नहीं करेगा, राइट। तो आत्मा का एविडेंस हम पा सकते हैं कि आत्मा शरीर के अंदर है, अनुभव कर सकते हैं, किंतु आत्मा को देख नहीं सकते। हाँ, हम उसको एक्सपीरियंस की आंख से देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। अनुभव माना हम उसको एक स्मृति एक हिसाब से उस तरह से देख सकते हैं, जैसे फिजिकल और नॉन फिजिकल है ना। तो आत्मा नॉन फिजिकल है और आत्मा की तीनों शक्तियां भी नॉन फिजिकल है। ऐसे मन को भी देख नहीं सकते हैं, माइंड को भी देख नहीं सकते हैं, बुद्धि को भी देख नहीं सकते हैं, संस्कारों को भी देख नहीं सकते हैं। तो आत्मा की जो है, आत्मा कहां पर है? यहां पर लोकेटेड है। इट इज इनविजिबल टू द फिजिकल आइज एंड इट इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ द फोरहेड बिटवीन द टू आईब्रोज। और लगभग यहां से 2.5 इंच अंदर है, लगभग यहां से अगर आप जाएं, हम कहते हैं आत्मा यहां निवास स्थान है, जहां बिंदी लगाते ना आप लोग मंदिर में भी तिलक यहां देते हैं। यहां क्यों देते हैं? यहां क्यों नहीं देते हैं? यहां पर तिलक क्यों नहीं लगाते हैं? यहां क्यों नहीं लगाते हैं? क्योंकि ये मालिक यहां पर रहता है, आत्मा आत्मा शरीर का मालिक है, आत्मा यहां रहती है, राइट? तो इसलिए मालिक को तिलक लगाया जाता है। तो ये जो आत्मा यहां से लगभग 2.5 यहां नहीं है, यहां से 2.5 इंच अंदर लगभग अंदर है और यहां से ऊपर से लगभग 3 इंच नीचे है। तो वो जो जहां ये दोनों लाइन कटती हैं, आपस में मिलती हैं, वहां आत्मा है। और वो जगह कौन सी है? हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बीच, राइट? हाइपोथैलेमस क्या है? मैंने दिखाया डायग्राम में, दो ब्रेन्स का यहां पर मॉड्यूलेटिंग सेंटर है। जो दो ब्रेन्स हैं, राइट और लेफ्ट ब्रेन है, उसका मॉड्यूलेशन यहां पर होता है। दोनों की जो इंफॉर्मेशन है वह यहां मॉड्यूलेट होती है। और ये जो सेंटर है नीचे पिट्यूटरी, ये सारी बॉडी के लिए हार्मोन्स निकालता है। तो ये ऐसी जगह है जहां पर दोनों ब्रेन्स पे भी कंट्रोल है, हार्मोन्स पे भी कंट्रोल है, एकदम इंटरसेक्शन पर है। मैं जैसे आप ड्राइवर कहां बैठता है कार में? ड्राइवर कार में कहां बैठता है बताइए? जहां पर स्टेयरिंग है, जहां पर ब्रेक्स हैं, क्लच है, एक्सेलरेटर है, लाइट के बटन है, वहीं बैठता है ना, जहां से पूरा कंट्रोल कर सकता है, की लगा सकता है, बंद करनी हो बंद कर सकता है, इमरजेंसी ब्रेक्स हो जहां पर होते हैं वहां से सब कुछ ऑपरेट कर सकता है। तो वहां पर ड्राइवर बैठता है ना। ऐसी आत्मा भी कहां बैठती है? जहां पर सब कुछ उसके वश में है, राइट? दोनों ब्रेन्स पर कंट्रोल है, हार्मोनल सिस्टम पर कंट्रोल है, और यहां से जो फाइबर जा रहे हैं उस पर कंट्रोल है, नीचे वाले ब्रेन को भी कंट्रोल, एक्यूरेट जगह पर बैठी हुई है, ठीक है? यहां से पूरा कंट्रोल कर सकती है। क्योंकि और भी अगर कोई यहां बैठाए तो, मेडुला में बिठाए तो कंट्रोल नहीं कर पाएगी। अगर एक ब्रेन में बिठा दे तो भी कंट्रोल नहीं कर पाएगी। सेरिबेलम में बिठाए तो भी कंट्रोल नहीं कर पाएगी। किंतु ये ऐसी जगह है जहां पर टोटल कंट्रोल कर सकती है, राइट? क्योंकि हाइपोथैलेमस के ऊपर ही क्या है, यहां पर हाइपोथैलेमस में ही थॉट्स गेट कन्वर्टेड टू मैटर, जो मैंने कल बताया आपको। जो विचार होते हैं यहां पर केमिकल के रूप में बदल जाते हैं, न्यूरोपेप्टाइड्स के रूप में। जो भी विचार हम करेंगे, जो आत्मा से जो हम विचार करेंगे, वो बुद्धि और मन आत्मा के साथ है। तो यहां जो विचार किया जाएगा उसका कन्वर्शन मैटर में हो जाएगा। थॉट इज ए एनर्जी और वो कन्वर्ट हो जाती है मैटर में। और मैटर जो है यहां से कहां जाता है हर सेल पर जाएगा। इट विल रीच एवरी सेल एंड देन एवरी सेल विल रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। हर सेल फिर उसके हिसाब से ही कार्य करेगी, राइट? तो यहां पर जो है, फिर इसके अलावा यहां पर जो थॉट्स हो गए, थॉट्स कंट्रोल हो गया। जो यहां पर टेम्पोरल लोब होता है, यहां पर टेम्पोरल लोब कहते हैं, टेम्पोरल लोब, एमिगडेला है ना, और ये हिप्पोकैम्पस होता है। तो ये जो पार्ट है, ये हमारा लिम्बिक सिस्टम है। लिम्बिक सिस्टम का क्या काम है? लिम्बिक सिस्टम हमारे इमोशंस और एटीट्यूड्स को कंट्रोल करता है, इमोशंस को, एटीट्यूड को कंट्रोल करता है। और जो ये फ्रंटल लोब है, यहां पर जो सेल्स हैं, मैक्सिमम सेल्स जो होती हैं, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर मेमोरी, राइट? तो ये मेमोरी के लिए हो गया। तो जब आत्मा जब आई, तो यहां पर आई, तो यहां पर जैसे आती है तो क्या करती है? थॉट्स हाइपोथैलेमस के द्वारा करती है एग्जीक्यूट। इमोशंस एटीट्यूड्स कहां से करती है? टेम्पोरल लोब से एग्जीक्यूट करती है। और मेमोरीज को फ्रंटल और पैरिटल लोब से एग्जीक्यूट करती है, राइट? कुछ पार्ट टेम्पोरल लोब में भी होता है, किंतु मैक्सिमम पार्ट फ्रंटल और पैरिटल लोब के द्वारा, मैक्सिमम फ्रंटल लोब के द्वारा होता है ना। तो इस तरह से मन को यहां हो गया, इसका काम यहां हो गया। और ये जो है हाइपोथैलेमस का एरिया है, हाइपोथैलेमस की अगर आप स्टडी करें एनाटॉमिकली, एज ए डॉक्टर अगर आप देखें, तो यहां पर जो न्यूक्लियस होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूक्लियाई होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं, जहां पर क्या बोलते हैं, एनालिसिस होता है सिचुएशंस का। जो भी सिचुएशन हमारे पास आती हैं, सामने आती हैं, आपको पता हाइपोथैलेमस में एक बायोलॉजिकल क्लॉक भी है। हाइपोथैलेमस में ही क्या है, एक क्लॉक लगी हुई है, वो क्लॉक के अनुसार हम काम करेंगे ना, वो काम हमारा फलदायी होता है। जैसे आपकी गोलियां हैं ना, ब्लड प्रेशर की गोलियां हैं, बीटा ब्लॉकर्स हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, डायबिटीज की टैबलेट्स भी हैं, वो टैबलेट आप सुबह के टाइम लेंगे तो उसका फायदा अच्छा कुछ अलग होगा, शाम को लेंगे तो उसका फायदा उल्टा, साइड इफेक्ट ज्यादा होंगे। अगर बीटा ब्लॉकर आप अर्ली मॉर्निंग लेंगे तो आपको फायदा होगा, रात को बीटा ब्लॉकर लेंगे डिप्रेशन हो जाएगा, पेट में कब्जी हो जाएगी, उदासी आ जाएगी। ऐसे ही अगर आप एस इनहिबिटर्स जैसे हैं, लिसिनोप्रिल है, रेमिप्रिल है, ये टैबलेट्स हैं, शाम के समय लेंगे अच्छा इफेक्ट होगा, सुबह के समय लेंगे खांसी होगी, इरिटेशन होगा, है ना, और भी कई साइड इफेक्ट हो सकते हैं। ऐसे अल्फा ब्लॉकर्स होते हैं, शाम के समय लेंगे ठीक रहेंगे, सुबह के टाइम लेंगे तो गिडनेस होगी, है ना। ऐसे मतलब अगर कोई दवाई भी एक्यूरेट टाइम पे लेंगे, डिस्प्रिन अगर सुबह के टाइम लेंगे नुकसान एसिडिटी बनेगी, शाम के टाइम लेंगे तो आपका इफेक्ट अच्छा होगा, एसिडिटी कम बनेगी और आपको ब्लड क्लॉट भी नहीं बनेंगे। तो मतलब ऐसे हर मेडिसिन का भी एक टाइम है लेने का, ऐसे वॉकिंग का भी समय है, है ना, नींद का भी समय है उस क्लॉक के अनुसार। अगर वो क्लॉक आप डिस्टर्ब कर देते हैं तो आपकी बॉडी में बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको सोने का समय आपको 10 बजे बताया मैंने, 10 बजे की बजाय 12 बजे सोएं तो वो क्लॉक खराब हो जाएगी, ठीक है। 4 बजे उठने का समय है, 4 बजे की बजाय 6 बजे उठे तो वो क्लॉक खराब हो जाएगी। 10 बजे हम सबको एक मैसेज आता है कि सो जाओगे, एक उबासी आती है, वो उबासी हमें संदेश देती है कि आप सोने का समय हो गया। अगर उसको इग्नोर कर दें तो मतलब इस तरह से हमारे अंदर एक क्लॉक, पूरी क्लॉक के अनुसार हमें करके वो सब यहां लगा हुआ है। इसके अंदर ऐसे बहुत सारे सिस्टम एनालिसिस के हैं। तो बुद्धि कहां पर है, एकदम आत्मा के आसपास। आत्मा की जो शक्ति बुद्धि, वो जो एनालिसिस पावर है, बुद्धि माना एनालाइजिंग पावर, जजमेंट पावर, वो जजमेंट पावर एकदम इस एरिया के आसपास ही बिखेर दी जाती है, राइट, ताकि वो यहां इस जंक्शन पर ही पूरा का पूरा कार्य मॉड्यूलेशन कर सके, है ना। जो मैसेज इसके थ्रू देना है यहां दे दे, दोनों इसमें जाना है दोनों को मैसेज दे दे, या हार्मोन्स को मैसेज देना है तो हार्मोन्स को मैसेज दे दे। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, यहां पर यहां से पेन का, यहां पेन थे लाल वाला और हरे वाला पेन था, यहीं से ही दो वायर्स जाती हैं, रेड 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 पेन है अपने पास, रेड और ब्लू, रेड और ग्रीन, थैंक यू। यहीं से ही दो वायर जा रहे हैं, इसी से एक्चुअली हाइपोथैलेमस से ही दो वायर्स जाती हैं, एक को कहते हैं सिंपैथेटिक सिस्टम, पूरे के पूरे नीचे तक जाता है, है ना, और एक को कहते हैं ये ऊपर की तरफ भी जाता है दोनों तरफ, और एक को कहते हैं पैरासिंपैथेटिक सिस्टम। ये हाइपोथैलेमस से जाती है वायर, सिंपैथेटिक सिस्टम और पैरासिंपैथेटिक सिस्टम। सिंपैथेटिक माना सॉर्ट ऑफ जब हमें स्ट्रेस होती है, टेंशन होती है, या हमें कोई चैलेंज मिलता है, प्रेशर आता है, तो ये हमारा सिस्टम एक्टिव हो जाता है, वो यहीं से रेगुलेट होता है हाइपोथैलेमस से। और जब हमें रिलैक्सेशन होती है, हम पॉजिटिव थॉट रखते करते हैं, तो ये हमारा पैरासिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिव हो जाता है। सिंपैथेटिक सिस्टम से हार्ट रेट बढ़ती है, बीपी बढ़ता है, आर्टरी स्पैज़म में चली जाती है, यू आर रेडी फॉर फाइट एंड फ्लाइट। और पैरासिंपैथेटिक सिस्टम से ब्लड प्रेशर कम होता है ना, शुगर लेवल भी कम हो जाता है, हार्ट रेट भी कम हो जाती है, आर्टरीज रिलैक्स हो जाती हैं, खुल जाती हैं, पोलेटल्स खुल जाते हैं, दैट मीन्स नाउ यू आर रिलैक्स्ड, ओके, आप एकदम शांत हो जाते हैं। तो ये यहां से सिस्टम। और एक सिस्टम और भी है, उसको कहते हैं हम रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। वो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम भी यहां से निकलता है, हाइपोथैलेमस से निकलता है, पूरी की पूरी स्पाइनल कॉर्ड में भी, मिड ब्रेन पॉन्स मेडुला होता है, स्पाइनल कॉर्ड में जाता है, और ब्रेन से यहां भी आपके पूरे कॉर्टेक्स में रहता है ऐसे। ये रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम होता है, इसलिए कहा जाता है, जैसे हमारा जो मुख है ना, हमारे मुंह के अंदर, मुख के अंदर और कानों के इस एरिया में, मुख में वो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम बहुत एक्टिव होता है, उसके बहुत ज्यादा फाइबर्स होते हैं, तो इसलिए उठने के बाद अगर आप ब्रश कर लेते हैं दांतों पर, मुख को वॉश कर लेते हैं, तो आप अलर्ट हो जाते हैं। ऐसे कानों को भी अगर आप यहां से रब कर लेते हैं तो आप अलर्ट हो जाते हैं, नींद फिर नहीं आएगी। जैसे बच्चे भी काम नहीं करते क्या करते हैं, बच्चे काम ना करें तो क्या करते हैं, बच्चों कहते हैं कान, उसके कान पकड़ के मरोड़ देते हैं या कान रगड़ देते हैं तो क्या होगा, बच्चा अलर्ट हो जाएगा। ठीक है, बच्चे कहते हैं कान पकड़ो अपने अपने आप, है ना, तो अपने आप ही बच्चा अलर्ट हो जाता है, राइट। तो क्योंकि यहां पर इस एरिया में बहुत सेंसिटिव एरिया होता है, इस तरह फेस पर भी होते हैं ये वाले फाइबर्स ज्यादा मात्रा में, तो ये फेस पर कहते हैं फेस, मुख को धो लीजिए, ब्रश कर लीजिए, कानों को थोड़ा रब कर लीजिए तो आप अलर्ट हो जाएंगे। सुबह सुबह जैसे सुस्ती आती है ना उठने के बाद, तो इसके लिए मुंह कहते हैं मुंह धो लीजिए, कान को तोलिए, ताबल सर कर लीजिए, ब्रश कर, तो इस तरह से हमें करने से फायदा होता है, राइट। तो ये सिस्टम हमारा टोटली यहां से रेगुलेट होता है। तो सेंटर पॉइंट क्या कौन सा हुआ, हाइपोथैलेमस और इसके बीच में एरिया, और वहां पर ही आत्मा का निवास स्थान है। अब इसका क्या एविडेंस है कि आत्मा होती है, इसका क्या एविडेंस है आत्मा होती है, ऐसे तो बहुत सारे एविडेंस अभी निकले हैं, पर एक बात यहां समझने की कि जो हमारी जो आत्मा जो है वो क्या है तो नॉन फिजिकल। साइंस जो है, साइंस किस पे बेस्ड है, साइंस एक्सपेरिमेंटेशन के ऊपर बेस्ड होती है, और स्पिरिचुअलिटी किस पे बेस्ड होती है, एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड होती है। साइंस को हम एक्सपेरिमेंट के द्वारा दिखा सकते हैं कि हां ये चीज ऐसे है, ये चीज ऐसे है, ये चीज ऐसे है, किंतु साइलेंस को स्पिरिचुअलिटी में ना, साइलेंस स्पिरिचुअलिटी को हम ऐसे मशीनों के द्वारा दिखा नहीं सकते हैं कि ये आत्मा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। शांति के लिए क्या टेस्ट है, कोई टेस्ट है शांति के लिए, प्रेम के लिए कोई टेस्ट है कि नहीं, इस आदमी को इस आदमी से प्रेम है, ऐसा कोई टेस्ट है प्रूव करने वाला, ऐसा कुछ है, ऐसा कोई टेस्ट तो है नहीं कि दो आदमी की पहले टेस्टिंग करो इनका आपस में प्रेम है कि नहीं है, कोई टेस्ट दुनिया में बना ही नहीं अभी तक, है ना। किंतु एक्सपीरियंस के द्वारा हम अनुभव कर सकते हैं, मतलब अनुभव कर सकते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी से साइलेंस पावर पैदा होती है, जब हम अपने आप को आत्मा समझते हैं तो साइलेंस पावर, साइलेंस माना शांति पैदा होती है, और शांति से साइंस का जन्म होता है। साइंस का जन्म कैसे हुआ, जब मन बहुत गहरी साइंस शांति में जाता है, साइलेंस में जाता है, तो हमें टचिंग्स होती हैं, टचिंग्स माना परमात्मा से टचिंग्स होती हैं, और फिर हमारे मन में ऐसे ऐसे ख्याल आते हैं कि ऐसे ऐसे ये काम ऐसे होना, काम तो सब के सब जो हो रहे थे पहले भी हो रहे थे, सेब रोज ही पेड़ से गिरता था नीचे, न्यूटन के सामने पेड़ गिरा, वो सेब गिरा तो उसको मन में क्या आया, ये सेब नीचे क्यों गिरा, ऊपर की तरफ क्यों नहीं गया, तो क्या बन गया, न्यूटन का लॉ बन गया, है ना, राइट। ऐसे रोज ही जब वो पानी उबल रहा था तो ढकना ऊपर ऊपर ऐसे ऐसे हो रहा था, तो उसने कहा अरे तो स्टीम में इतनी पावर है तो स्टीम इंजन बन गया, है ना, वो तो रोज ही ऐसे करता था, है ना। किंतु वो साइलेंस से जब आप किसी शांति से उस बात को ऑब्जर्व करते हैं, चिंतन करते हैं, तो साइंस का जन्म होता है, ठीक है। पर किंतु साइंस का प्रूफ होता है एक्सपेरिमेंट से, और साइलेंस का, स्पिरिचुअलिटी का प्रूफ एक्सपीरियंस से होता है। इसलिए हम कहते हैं कि एक्सपीरियंस है दोनों सच्ची, बल्कि स्पिरिचुअलिटी बहुत बड़ी पावर है, साइंस से भी बड़ी पावर है, तो ट्रूथ की तरफ दोनों ले जाती हैं, दोनों ही ट्रूथ की तरफ ले जाती हैं, ठीक है, किंतु तरीका अलग अलग है। अब हम देखें कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, अभी कुछ ऐसी मशीनें डेवलप हो रही हैं कि जो बहुत ही मतलब साइंस और स्पिरिचुअलिटी के बीच की मशीनें हैं। पहले तो खाली फिजिकल बॉडी के लिए थी, एक ईजी का मैंने आपको बताया था कल ही, जब हम ईजी करते हैं जैसे हार्ट का ईसीजी करते हैं, तो हम ईजी के द्वारा थोड़ा सा इनडायरेक्ट एविडेंस ले सकते हैं। अगर आपकी रिदम बीटा रिदम है तो इसका मतलब है कि आप बीच की स्थिति में हैं, विद आईज ओपन, आईज बंद किया तो ये हो गया, नींद में गए तो ऐसा हो गया, कम हो गई फ्रीक्वेंसी, कम फ्रीक्वेंसी हो गई, और डीप नींद में चले गए, बहुत गहरी नींद में, तो ये डेल्टा रिदम आ गई, ठीक है, और आत्मा ने शरीर छोड़ा तो जीरो रिदम आ गई। तो इतनी जो नीचे की तरफ जो रिदम जा रही है, दे आर पीसफुल वेव्स, राइट। मैंने बताया था आठ पर शांति की फीलिंग होती है, छह पर प्यार की फीलिंग होती है, चार पर अतीन्द्रिय सुख की फीलिंग होती है, और दो पर आनंद की अनुभूति होती है, और एक पर सर्वशक्तिमान की फीलिंग होती है, राइट। आई एम मास्टर ऑलमाइटी, आई कैन डू एवरीथिंग, इस तरह की फीलिंग होती है। जो हमारी दादी जानकी जी हैं, चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज हैं इस समय, उनकी जो ब्रेन रिदम रहती है हर समय, तो शी हैज बीन डिक्लेयर्ड द मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड। क्यों मोस्ट स्टेबल माइंड उनको बताया गया, क्योंकि उनकी जो फ्रीक्वेंसी हर समय, जिस समय भी उनको आप लेक्चर देते समय भी देख लीजिए, या उनकी अमेरिका में टेस्ट हुए, ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट ईईजी किया गया, तो उनका जो बेसिक ब्रेन रिदम जो रहती है विद आईज ओपन 2 से 3 रहती है, मतलब ये रिदम उनकी हमेशा रहती है और उनके ब्रेन में कोई ट्यूमर नहीं है, ठीक है, कोई बीमारी उनको नहीं है, मेंटल दिमाग की कोई ट्यूमर वगैरह कुछ नहीं है, तो उनकी हमेशा ही रिदम 2 to 3 रहती है, बातचीत करते समय भी 2 to 3 रहती है, तो वो उनका माइंड स्टेबल है। इसलिए वो क्या करती है एट द एज ऑफ 92 की एज में भी कैसे रहती है, 20-20 घंटे काम करती है, मुश्किल से 2 घंटे सोएंगी, और सोते भी मतलब बस बहुत कम, बहुत ही मतलब 2 घंटे भी, कई बार 2 घंटे भी नहीं सोएंगी, और हमेशा एनर्जी से भरी रहती है, भरपूर, जरा भी टायर्डनेस उनको नहीं होती, क्योंकि इतनी उनके अंदर एनर्जी है, लाइफ फोर्स एनर्जी इतनी ज्यादा है उनके अंदर। और यह भी एक एविडेंस पाया गया ईईजी के द्वारा, जैसे आप जल्दी चिंता गुस्सा करेंगे तो आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, और ज्यादा गुस्सा करेंगे और विकार की तरह सोचेंगे तो आपकी फ्रीक्वेंसी और ज्यादा बढ़ जाएगी, और फ्रीक्वेंसी ज्यादा बढ़ेगी तो मैड हो जाएंगे, ठीक है, राइट। तो इस तरह से आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है और आप उतनी ही कमजोर महसूस करते हैं। इधर आप जितना जितना जाएंगे यहां पर आपको ब्लिस, इस तरफ आनंद है, इस तरफ मजा है, थ्रिल है, जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी थ्रिल ज्यादा फील होती है, मजा आता है, जैसे टीवी देखते हैं, रेस देखते हैं, है ना, थ्रिल आती है। टीवी में क्या होता है, टीवी का फ्रेम रेट कितना होता है, टीवी जब चल रहा है ना, फिल्म आती है टीवी के ऊपर, तो उसका फ्रेम रेट नॉर्मली 20 से अधिक हो तो हमें वो किसके रूप में दिखाई देता है, फिल्म के रूप में दिखाई देता है, मतलब चलती मूविंग पिक्चर्स के रूप में दिखाई देता है। जब 21 सेकंड में 20 फ्रेम बदलते हैं तो, और जो फास्ट जो ट्रैक होती है, सपोज आपको कोई सीन रेस का सीन है, हॉरर सीन है, जिसमें कोई इफेक्ट लेना होता है, कोई आदमी गुस्सा कर रहा है, कोई लड़ाई हो रही है, फाइट हो रही है, या दूसरे सीन्स होते हैं, तो उन सीन्स में फ्रीक्वेंसी फास्ट कर देते हैं और ज्यादा फ्रेम रेट बढ़ा देते हैं, तो उसका इंपैक्ट ब्रेन पर बहुत ज्यादा पड़ता है, 40 फ्रेम रेट कर 45 कर देते हैं, तो थ्रिल फील होती है, यू गेट इन्वॉल्व विद द टेलीविजन, यू गेट इन्वॉल्व विद द सीन, जो कुछ हो रहा होता है वहां पर वो आप फील करने लगते हैं, वहां पर रो रहे होते हैं तो वहां भी रो रहे होते हैं, वहां डर रहे होते हैं तो वहां भी डर रहे होते हैं, सामने वाला भी डर रहा होता है, उधर उधर सेक्स के सीन दिखा रहे हैं तो आपको भी वो थ्रिल वहां कर रहे हैं तो उनको भी थ्रिल आ रही है, दे गेट सो मच इन्वॉल्व। आप अपने बच्चे को देखिए, आपका बच्चा अगर टीवी देख रहा है, आप अचानक आके टीवी बंद कर दीजिए, तो क्या होगा, बच्चा क्या करेगा, बच्चा एकदम चिल्लाता है ना, नहीं वो चिल्लाता है, टीवी क्यों बंद किया, आपके रिस्पेक्ट से नहीं बोलता है, आपको गुस्से से बोलता है, क्योंकि वो तो फास्ट ट्रैक में था और आपने क्या टीवी बंद कर दिया। तो ऐसा रिसर्च में पाया गया है कि टीवी देखने से 10 मिनट के बाद टीवी की फ्रेम रेट और आपकी फ्रीक्वेंसी सेम हो जाती है, अगर टीवी की फ्रेम 40 है तो आपकी भी 40 हो जाती है, अर्थात बिना चिंता किए, बिना गुस्सा किए, बिना किसी विकार में जाए आपको वो फीलिंग्स हो रही हैं और आपके ब्रेन पर वही असर पड़ता है, आपकी एनर्जी कम हो जाती है, इसलिए आप देखेंगे टीवी देखने के बाद आप थक जाते हैं, टायर्ड हो जाते हैं। ये रिसर्च 96 में हुई थी, 96-97 में हुई थी, कौन सी कंट्री में की थी, शायद जर्मनी में की थी, कौन सी कंट्री में की थी, तो ये जब रिसर्च पब्लिश की गई तो उसके बाद काफी सिटीज में बहुत शोर मचा था, आपने अखबार में भी देखा होगा, नो टीवी सिटीज बनी थी, नो सिटी, उस समय क्या कर रहे थे, जब रिसर्च हुई तो काफी सिटीज में क्या किया गया, लोगों ने अपने टीवी को ला के, जो मेन होता है ना, क्या बोलते हैं इसको, मेन चौक होता है, वहां लाके टीवी सब डालते थे अपने टीवी, और ये मतलब लोगों को जब पता लगे कि हमारे ब्रेन पे क्या असर पड़ता टीवी का, तो फिर टीवी वालों ने क्या किया, टीवी तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, तो टीवी वालों ने फिर एक रिसर्च कराई दूसरी, उसने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, फिर लोगों ने वापस टीवी अपने घरों में लाने शुरू कर लिए। तो टीवी एक बहुत ही हार्मफुल मीडिया है, जिसके द्वारा हम अपने आप को नुकसान करते हैं, है ना, एक तरफ तो हम शांति की बात कर रहे हैं और एक तरफ टीवी देख रहे हैं, तो क्या होगा, दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी है ना, दोनों के दोनों क्या है, अपोजिट हो गए ना, एक तरफ आप शांति से मेडिटेशन के द्वारा अपने आप को लोअर फ्रीक्वेंसी में लेके जा रहे हैं, दूसरी तरफ टीवी देख रहे हैं, तो क्या होगा, इफेक्ट आएगा ही नहीं, ठीक है। तो ये जो है हमारी, तो ये तो एक तरीका है दूसरा कि मेडिटेशन का इफेक्ट नापने के लिए, जैसे ही अपने को आप आत्मा समझ के परमात्मा से, बताया था कल आपको, अगर ये फाइबर्स काट दिए जाएं बीच में से, अर्थात अपने को देह भूल करके अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करें। ये शिव बाबा जैसे इसको है, ये सुप्रीम सोल है, ये ओशियन है, सात गुणों का, सात जो एनर्जी है उनका ओशियन है, आत्मा के सात गुणों का स्वरूप है। तो अगर अपने को आत्मा समझ के इसकी तरफ कनेक्शन जोड़ें तो क्या होगा? आत्मा में ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख आना शुरू होगा, और उससे क्या होगा, आपका पैरासिंपेथेटिक सिस्टम एक्टिव हो जाएगा। आपके जो जो थैलेमस, ये जो है पिट्यूटरी ग्लैंड है, यहां से कौन से हार्मोन निकलेंगे? थायराइड से कौन से हार्मोन निकलेंगे? एड्रिनल से कौन से हार्मोन निकलेंगे? हैप्पी हार्मोन ज्यादा निकलेंगे, स्ट्रेस हार्मोन्स कम हो जाएंगे, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, बुद्धि जो है, इंटेलेक्ट जो यहां आसपास के सेंटर्स हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक है और दूसरे आसपास के सेंटर, सब रीसेटिंग हो जाएगी, सबकी एक्यूरेटली कंट्रोल हो जाएंगे सारी चीजें, ठीक है। तो यहां आपका कंट्रोलिंग पावर बढ़ जाएगी, जजमेंट पावर शार्प हो जाएगी, थॉट का जो सिस्टम है, थॉट सिस्टम है, वो जो सेल्स हैं रिफ्रेश हो जाएंगी, राइट। इसी तरह से जो आपका टेम्पोरल लोब है, वहां पर जो भावनाएं और एटीट्यूड कंट्रोल होते हैं वो रिफ्रेश हो जाएंगे, ठीक है। आपकी जो मेमोरी सेल्स हैं वो रिफ्रेश हो जाएंगे, ठीक है। मतलब बॉडी के लगभग हर सेल रिफ्रेश हो जाएगी। जितनी फ्रीक्वेंसी लो होगी, जितनी फ्रीक्वेंसी लो, एनर्जी ज्यादा होगी, तो वहां से एनर्जी फोर्स हर सेल को पहुंचेगी, क्योंकि आत्मा की सातों एनर्जी जो है बॉडी की हर सेल को आवश्यकता है। आत्मा बॉडी की हर सेल को सातों एनर्जी से चला रही है, ज्ञान से, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियां बॉडी की हर सेल को चाहिए, और माध्यम है मन। मन के द्वारा ही ये एनर्जी बॉडी की सेल्स में जाती है, अर्थात आत्मा की सातों एनर्जियां, जो एनर्जीज हैं, सातों एनर्जी हैं, वो टीम के थ्रू, विचारों के थ्रू, भावनाओं के थ्रू, एटीट्यूड के थ्रू और मेमोरीज के थ्रू ही बॉडी की सेल्स में जाती है। अगर हमारी टीम पॉजिटिव है तो एनर्जी का फ्लो फास्ट होता है, और अगर हमारी टीम नेगेटिव है तो क्या होता है, एनर्जी का फ्लो रुक जाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अगर जैसे आप यहां पर आए, है ना, यहां पर आए तो आपको हम यहां पर कुछ बातें सुना रहे हैं, ठीक है, और ये ज्ञान हम आपको बता रहे हैं जो कि परमात्मा ने स्वयं दिया है ना। हम जैसे मैं सुबह में बात कर रहा था, अगर आपके मन में मेमोरीज, आपकी जो मेमोरीज हैं वो नेगेटिव हैं, मान लो आप कहीं और गए थे, पहले कहीं गए हैं, किसी साधु महात्मा के पास गए हैं, उसने कुछ बातें आपको सुनाई हैं, कुछ बातें सच्ची हैं, कुछ बातें झूठी थी, उनकी बातें ठीक नहीं थी, तो आपका एटीट्यूड उस, आप सस्पिशियस एटीट्यूड से यहां आए हैं, तो आपकी मेमोरीज नेगेटिव है, एटीट्यूड नेगेटिव है यहां आने के बाद, तो क्या होगा, यहां जो सुनेंगे वो ज्ञान सुना तो सही, यहां से सुना, कानों से सुना, किसने सुना, आत्मा ने सुना, आत्मा से यहां पहुंचा, अब उसको कहां जाना है, उस ज्ञान को रिकॉर्ड होना चाहिए फ्रंटल लोब में, तभी तो वो आपकी लाइफ में स्टे करेगा, नहीं तो आप भूल जाएंगे, थोड़ी देर में आप भूल जाएंगे, मैं भी आपको, हम बताएंगे आप कौन है, फिर सोचेंगे थोड़ी देर में मैं तो कौन हूं, है ना, फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना, और फिर हमने आत्मा और भी बातें आपको पढ़ाई गई, वो बातें आपके अंदर बैठेंगे ही नहीं, क्योंकि आपका जो मेमोरीज है वो नेगेटिव है, वो जो एनर्जी यहां से आपको पहुंची ज्ञान की, वो मेमोरी क्या करेगी यहां पर, ये मिस्टर मानवानी लगता सो रहे हैं, अलर्ट है, तो ये जो मेमोरी यहां से यहां कैसे जाएगी, ब्रेन की सेल्स में कैसे जाएगी मेमोरीज, ये जो यहां से जो ज्ञान आपको सुना वो ब्रेन में रिकॉर्ड कैसे होगा, थ्रू मेमोरीज, अगर मेमोरी नेगेटिव है तो वो एनर्जी वहीं ब्लॉक हो जाएगी, ब्रेन की सेल्स तक नहीं पहुंचेगी, एटीट्यूड नेगेटिव है तो आपकी ब्रेन की सेल्स तक नहीं पहुंचेगा, इमोशंस भावनाएं नेगेटिव हैं तो यहीं रुक, अगर थॉट्स नेगेटिव है तो यहीं, जैसे आत्मा लंग्स को शांति से नरिश करती है, जितनी अधिक शांति आपके यहां पर होती है उतना ही शांति फेफड़ों में ज्यादा पहुंचती है, और उतना ही ज्यादा आपका ब्रीदिंग डीप एंड स्लो होती है, रिदमिक होती है, नेचुरल होती है, राइट। अगर आपके मन में शांति के प्रति नेगेटिव विचार है, नेगेटिव आज कहते हैं दुनिया में, एक आप सोचें, एक विचार मन में हो, अरे आज तो दुनिया में कहां शांति हो सकती, पॉसिबल ही नहीं है, हर आदमी लड़ रहा है, हर आदमी झगड़ रहा है, हर आदमी टेंशन में है, शांति पॉसिबल ही नहीं है, आप ये विचार लेके यहां बैठ गए, और मैं आपसे शांति की बात कर रहा हूं, तो क्या होगा, मेमोरीज में ही वो आपकी जो एनर्जी जो यहां से जो पहुंच रही है कानों के द्वारा, वो यहीं ब्लॉक हो जाएगी और आपके लंग्स में नहीं पहुंचेगी, तो आपके सांस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आपके एटीट्यूड नेगेटिव है शांति के प्रति तो वो एनर्जी पहुंचेगी नहीं, अगर इमोशन नेगेटिव है, थॉट्स नेगेटिव है, तो एनर्जी आपके लंग्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वही सांस फूलेगा चलने फिरने पर। अगर शांति अंदर पहुंच गई तो चलते फिरते सांस आपका बहुत फ्रेश हो जाएगा, बहुत फ्री हो जाएगा, राइट। ऐसी आत्मा जो है प्रेम से हार्ट को नरिश कर रही है, जितना अधिक प्रेम यहां पर आपके है और उसके विचार आपके पॉजिटिव हैं, आपकी टीम पॉजिटिव है इसके प्रति, प्रेम के प्रति, तो क्या होगा, आपके हार्ट की जो कोलेटरल्स हैं खुल जाएंगे, आर्टरीज भी डायलेट हो जाएंगे, ब्लॉकेजेस खुलने लगेंगे। किंतु अगर आपकी मेमोरीज नेगेटिव है लव के बारे में, एटीट्यूड नेगेटिव है, तो क्या होगा, भले कोई व्यक्ति आपको प्यार कितना ही प्यार से बोले तो भी क्या करेंगे, आप विश्वास नहीं करेंगे, नहीं नहीं ये आदमी जरूर कुछ ऐसे प्यार से बोल रहा है, इसका कोई मतलब होगा, तो आपके अंदर वो प्यार अंदर जाएगा ही नहीं, ठीक है ना, तो वो अंदर हार्ट को नरिशमेंट नहीं मिले। इसलिए तो क्या होता है, दो संबंधों में, किसी भी संबंध में, पति पत्नी का संबंध हो, दोस्तों का संबंध हो, तो पास्ट की मेमोरीज जो होती है ना, माने एक किसने पति पत्नी है दो, है ना, उन्होंने आपस में कोई भी कुछ कह दिया, कोई बात झगड़ा हुआ, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एक हमारे पास कपल आया था, दिल्ली से आया था, तो उनकी 27 साल हो गए थे शादी हुए, उस आदमी को एक बार बाईपास हो गया था, दो बार एंजियोप्लास्टी हो गई थी, उसके बावजूद भी उस आदमी को लगातार पेन रहता था, वो हार्डली 20 मीटर चलने पर भी उसको ब्रेथलेसनेस होती थी, बहुत तकलीफ होती थी, ही वॉज हार्डली आई थिंक 47-48 ईयर्स का होगा, ही वॉज ए इंडस्ट्रियलिस्ट, उसकी वाइफ म्यूजिक टीचर थी, एंड बोथ वॉज स्मार्ट पीपल, दो बच्चे थे उनके। तो वो पहली बार जब हमारे पास हार्ट के प्रोग्राम में आए, तो जब हमारे पास 5 दिन तो हम पढ़ाते हैं, उसके बाद 2 दिन काउंसलिंग करते हैं, लास्ट में इंडिविजुअल काउंसलिंग करते हैं, जब मेरे पास काउंसलिंग के लिए आए, तो मैंने कहा, मिस्टर स्टूडेंट्स, आपको ये प्रॉब्लम जो है, आपको बाईपास भी हो गया, एंजियोप्लास्टी भी हो गया, आप क्या समझते हैं, आपको क्यों बार बार बाईपास कराने के बाद भी तकलीफ हो रही है, एंजियोप्लास्टी बाईपास भी आपका 4 साल में फेल हो गया, एंजियोप्लास्टी 2 बार हो गई उसके बाद, तो भी स्टिल यू आर नॉट कंफर्टेबल, व्हाट डू यू थिंक। वो चुप रहा, फिर उसकी वाइफ से मैंने पूछा, आप क्या समझती हैं, आपके पति को क्या प्रॉब्लम है, वाई सो टेंस, वाई सो, मतलब ये क्यों नहीं ठीक हो रहे हैं, जबकि आपने एस्कॉर्ट्स में बाईपास कराया है, एक अमेरिका में जाकर एंजियोप्लास्टी कराई, एक इंडिया में एंजियोप्लास्टी कराई है, मतलब यू आर सो वेल ऑफ, आपके पैसे की कमी नहीं है, आपका बहुत सुंदर घर राजौरी गार्डन में घर है, बहुत अच्छे वेल ऑफ आप हैं, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है, तो भी आपको इतनी क्या टेंशन है आपके लाइफ। तो हस्बैंड चुप रहा, फिर मेरे को इशारा किया कि उसने मेरी वाइफ को बाहर भेज दीजिए, तो मैंने उसकी वाइफ को कहा, प्लीज आप बाहर जाइए और मुझे अपने मन की बात बताइए, क्या बात है, मुझे इनसे कुछ बात करनी है इंडिविजुअली। तो उसकी वाइफ बाहर चली गई, तो उसने कहा, मेरे को एक बात मन में सताती है हमेशा, 27 साल मेरी शादी के हो गए लगभग, जब मेरी शादी हुई तीसरे दिन मेरी वाइफ किसी कुछ बोल रही थी, और मैंने सुना कि मेरे को मतलब कुछ ऐसा मुझे लगा कि मेरी वाइफ मेरे को डिसलाइक करती है, मतलब ही वॉज 5'9", हाइट 5'9" थी, फेयर कम्प्लेक्शन था, नाइस बिल्ट पर्सन, तो ऐसा कुछ उसने मुझे कुछ ये होता कि जब भी मैं इसको देखता हूं मुझे लगता है ये मेरे को डिसलाइक करती है, मेरे को उसके प्रति कुछ उसके मन में मेरे प्रति है, तो जब भी मैं देखता हूं उसको मुझे टेंशन होती है इससे। 27 साल पुरानी बात, उसके बाद उसको हर समय टेंशन रहती है, बात उसके मन में हमेशा कि एक कहीं ना कहीं डिस्कम्फर्ट उसको फील होती है हमेशा, जबकि उसके जीन्स भी नहीं थे, ही वॉज नॉट हाइपरटेंसिव, ही वॉज नॉट डायबिटिक, उसके कोई जीन्स भी नहीं थे, बट वेरी सेंसिटिव पर्सन, टाइप ए पर्सन, हमेशा जल्दी में, परफेक्शनिस्ट बाय नेचर, सेंसिटिव एंड टाइप ए नेचर का आदमी था, वाइफ भी स्कूल म्यूजिक टीचर थी। तो मैंने कहा, अच्छा ठीक है, अभी आप, उसकी वाइफ को बुलाया, मैंने कहा अभी आप अंदर आप बाहर जाओ, उसकी वाइफ बैठ जाए। तो उसकी वाइफ ने फिर मैंने पूछा, आप क्या हुआ था, तो उसने कहा, मैं तो ऐसे ही मतलब अपनी किसी लेडी से, हमारे साथ में एक लेडी थी, उनसे मैं बात कर रही थी, 3 दिन की बात है, तो मैं 3 दिन ही शादी थर्ड डे था और हम ऐसे से बात, मैं तो इनके बारे में कुछ बात ही नहीं कर रही थी। और मैंने कई बार इनसे पूछने की कोशिश की पिछले 27 साल में कि आपके मन में क्या बात है, मुझे क्लियर करो ना, मैंने क्या प्रॉब्लम है, मेरे कौन सी गलती हुई है। वो बोलते भी नहीं है और चुपचाप भी रहते हैं और सेंसिटिव है ना, ही डज नॉट स्पीक आउट, इंट्रोवर्ट नेचर है और परफेक्शन भी चाहते हैं हर चीज में और बोलते नहीं। तो वो दिन था जब इनको मैंने दोनों को फिर दोबारा से उनकी सारी बात सुन के दोनों इकट्ठा बिठाया, फिर उनके मन की सारी बात सुनी, दोनों की काउंसलिंग करने के बाद फिर वो ठीक हुए। तो 27 साल तक उनके अंदर क्या था, इकट्ठे रहते हुए प्यार नहीं था, राइट, और दैट वाज द कॉज ऑफ प्रॉब्लम। उसकी आर्टरीज के साइज के आर्टरीज की नैरो हो गई थी, सिर्फ स्पैज़म में रहती, हर समय स्पैज़म में रहते थे। 3 मिलीमीटर की आर्टरी उसकी एलईडी उसकी 1.5 मिलीमीटर की थी, आधी तो वैसे ही थी, बिना ब्लॉक हुए ही 1.5 थी और उसके पास से ब्लॉक हो गए। आरसीए भी उसकी 2 मिलीमीटर, नॉर्मली 3 मिलीमीटर की आर्टरीज होती, मतलब इतने उसके अंदर टेंशन रहती थी कि हर समय उसकी आर्टरीज भी स्पैज़म में रहती थी। इसलिए उसको बाईपास करने के बाद भी एंजाइना होता था, एंजियोप्लास्टी करने के बाद भी एंजाइना होता था। और जैसे ही उसे रिलैक्स हुए, उसके 16 ब्लॉक्स थे उसके हार्ट में, 16 ब्लॉक्स थे उसके हार्ट, 16 जगह पे ब्लॉक्स थे। तो कहां कहां बाईपास करें, कहां कहां एंजियोप्लास्टी करें, डिफ्यूज डिजीज थी बहुत। तो उसके बाद जब वो रिलैक्स हो गए तो उसके बाद उन्होंने फिर दोबारा एंजियोग्राफी करी, तो काफी सारे ब्लॉक्स निकल गए विद इन ए पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, जब इनकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। मैं दोनों को बहुत ही आपस में अंडरस्टैंडिंग हो गई। तो कहते आज 27 साल के बाद हमको आज लाइफ में लगता है कि हम एक दूसरे के लिए हैं, कि तो 27 साल हमें ये लगा नहीं, ये मेरे साथ रहती जरूर है कि तो इसकी लाइफ ये मेरे लिए नहीं है, ये मेरी नहीं है। और वाइफ को भी ये फील होता रहा, ये बहता मेरे साथ है किंतु मेरे साथ नहीं है। तो सिर्फ एक मेमोरी, एक छोटी नेगेटिव मेमोरी क्या करती है हमारे अंदर, कोई भले हमसे कितने मर्जी प्यार से बात करे, कितना मर्जी हमें सेक्रीफाइस करे, हमें वो फीलिंग नहीं आती। कितना ही हमें अच्छी चीजें बना के दे किंतु हमें वो फीलिंग नहीं आती। कहती मैं हर साल इनको गिफ्ट देती हूं, अच्छी अच्छी गिफ्ट देती हूं, अपनी 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 जो सैलरी होती है मेरे पास, जो म्यूजिक मैं टीचर की तरह काम करती हूं उसमें से इनको सब पैसा इनको दे देती हूं, और ताकि इनको मेरे पर कॉन्फिडेंस रहे, फुल कॉन्फिडेंस रहे। मैं कहीं घर से बाहर नहीं जाती हूं, सिर्फ वहां जाती हूं और अपने घर आती हूं, कहीं भी नहीं जाती हूं, कहीं पार्टीज में जाना लोग मुझे बुलाते मैं जाती नहीं, ताकि इनको शक ना हो, है ना। तो भी मतलब 27 साल मेरे को हो गए करते करते, तो भी इसको आज तक मेरे ऊपर फेथ नहीं। उसकी क्या गलती थी बेचारे की, सिर्फ एक छोटी सी बात उसने किसी को कही और वो उसके बारे में नहीं कह रही, किसी और के बारे में कह रही थी, उसके ऊपर शक हुआ। और तो ऐसे कितना नुकसान हमें होता है एक नेगेटिव मेमोरी से, राइट। तो बिना ऐसे ही जरा सा एक बार विश्वास टूट जाए किसी का किसी के ऊपर, तो किस तरह से वो बातें हमारे जीवन के लिए विष बन जाती है, राइट। तो आत्मा के लिए एविडेंस बताने की आवश्यकता है क्या, पक्का है यह बताऊं एविडेंस, किसी को शक है तो मैं एविडेंस भी बता दूं, चलो बता।